हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। उन सब लोगों के बीच हुई बहस सुनकर स्वीटी डरी सहमी उनके बीच खड़ी रही। एक तरफ उसका परिवार था, उसकी माँ, पिता और सगा भाई। दूसरी तरफ आदित्य, उसके बड़े पिता का बेटा, जिसके साथ वो इतने महीनों से रह रही थी और अब उसे अपने भाई जैसा मानती थी। उसने आदित्य की स्थिति भी देखी थी और अपने माता पिता का स्वभाव भी जानती थी। वे कितने लालची थे और हमेशा दूसरों के धन के पीछे पड़े रहते थे। सुनैना ने स्वीटी की ओर देखते हुए ये बात नोटिस की और उससे कहा, स्वीटी, तुम अपने कमरे में जाओ, कोई बात होगी तो बाद में तुम्हें बुला लूंगी। सुनैना की बात सुनकर स्वीटी हल्के से सिर हिलाते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही है स्वीटी, अपने माँ बाप को ऐसी हालत में छोड़कर? तुझे कुछ तो बोलना ही चाहिए हम लोगों की तरफ से, और वैसे भी ये कोई एहसान नहीं कर रहा तुझे यहाँ रहने की अनुमति देकर, जो तू इसकी बीवी की बात इस तरह मान रही है। आदित्य ने एकदम गंभीर होते हुए कहा, चाची जी, आप क्या बोल रही हैं? मैंने कभी भी इस बात के लिए कोई एहसान नहीं जताया, और आप अपनी बात और स्वीटी के यहाँ रहने की बात को अलग रखें तो वही बेहतर होगा। इस बार चाचा जी ने मुँह खोला, अच्छा, अगर इतने ही महान हो तो फिर चुपचाप हमें हमारा हिस्सा भी दे दो, बिना कोई नाटक किए। अपने दोनों हाथ सामने की ओर बांधते हुए सुनैना ने उनसे पूछा, कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं आप दोनों? कोई लीगल पेपर्स हैं क्या आपके पास? मेरा मतलब है, कोई वसीयत, लीगल पेपर्स कुछ तो होगा जिससे आप हमारी सिंघानिया इंडस्ट्रीज की प्रॉपर्टी पर दावा कर रहे हैं, या फिर बस ऐसे ही? चाचा और चाची कुछ बोल पाते उससे पहले आदित्य ने सुनैना की बात का जवाब दिया, कुछ नहीं है इन लोगों के पास सुनैना, इनका प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है। डैड ने इन्हें एक होटल दिया था जब वे जीवित थे, लेकिन अपनी लापरवाही में इन्होंने उसे ठीक तरह से हैंडल नहीं किया और वो पूरा कर्ज में डूबकर बिक गया, इसलिए अब इनका यहाँ पर कोई हिस्सा नहीं है। चाचा जी ने अकड़ दिखाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही हिस्सा तो नहीं बनता था। माना कुछ वजह से मैं उस होटल को अच्छी तरह नहीं चला पाया, या फिर शायद वो होटल पहले से ही घाटे में चल रहा था और भाई साहब ने चालाकी से मुझे उसमें फंसा दिया जिससे सारा नाम मुझ पर आ जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, तुम मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी दो, मैं उसे अच्छे से मैनेज कर लूंगा। अब तो मेरा बेटा विशाल भी बड़ा हो गया है, वो भी इसमें मेरा साथ देगा। आदित्य ने फिर से गंभीर होते हुए कहा, एक दो लाख रुपए की मदद चाहिए तो बोलिए, मैं अभी आपको लाकर कैश दे सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा और किसी भी चीज़ की उम्मीद आप मुझसे मत रखिएगा, क्योंकि आप लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव करते थे और पैसे के अलावा कभी किसी भी बारे में नहीं सोचा आप लोगों ने, और आप सब कितने लालची हैं इस बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। वहाँ हो रही बातें सुनकर स्वीटी अब ऊब चुकी थी। उसने अपना सिर हिलाकर सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ गई, क्योंकि अपने माता पिता की तरफ से वो कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी। उनकी पूरी सच्चाई तो अब उसके सामने आ ही गई थी। विशाल ने भी अपने पिता की तरह अकड़ दिखाते हुए कहा, एक दो लाख क्यों लेंगे हम, जब हमारा करोड़ों का हिस्सा बनता है, और आदित्य भैया, आप इस तरह से हमारा हिस्सा नहीं मार सकते, कम से कम जितना हमारा हक बनता है। आदित्य ने सीधे कहा, कितने पर हक बनता है तुम लोगों का? जाओ साफ साफ पता करो और फिर उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवा कर लाओ, और हो सके तो यहाँ मत आना, हम सीधे कोर्ट में ही डील कर लेंगे और फिर उसी हिसाब से तुम्हारा जो भी बनेगा तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ खड़े होकर मेरा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह फालतू नहीं हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ नहीं रुका और सुनैना का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों की ओर ले जाने लगा। लेकिन सुनैना ने पीछे मुड़कर देखा कि चाचा चाची गुस्से से लाल चेहरा लिए वहीं कुछ सोचते खड़े थे, इसलिए सुनैना ने आदित्य से कहा, तुम चलो, मैं बस आती हूँ। आदित्य ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, ठीक है, बस अपना ध्यान रखना। सुनैना ने अपनी पलके झपकाकर उसे तसल्ली दी, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर आदित्य ने सिर हिलाया और वहां से स्टडी रूम की ओर चला गया। उसे पता था कि अगर अपने चाचा चाची से उसने और ज्यादा बहस की तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, और या तो उसकी तबीयत खराब होगी या फिर उसे ड्रिंक करने का मन होगा और फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए वो पहले ही वहां से चला गया, क्योंकि उसे सुनैना पर भरोसा था कि वो ये सब कुछ अच्छी तरह से हैंडल कर लेगी। आखिर सुनैना शादी से पहले अपने घर में भी ऐसे लोगों को अच्छे से हैंडल करती थी। सुनैना मुड़कर वापस हॉल में आई, जहां वे लोग अभी भी कुछ सोचते हुए खड़े थे। सुनैना ने भी अपने दोनों हाथ सामने की ओर बांधकर उन तीनों की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ, अपना हिस्सा लिए बिना नहीं जाएंगे क्या? लेकिन अफसोस, आपका तो कोई हिस्सा बनता ही नहीं है सिंघानिया इंडस्ट्रीज में, क्योंकि जहां तक मुझे पता है सब कुछ मिस्टर विजय सिंघानिया का बनाया हुआ था और आप मिस्टर गौरव सिंघानिया उनकी दरा पर कंपनी में ऊंची पोस्ट पर थे। बाकी आप में इतनी कोई काबिलियत नहीं है, गनीमत है उन्होंने आपको जॉब पर ही रखा था और जो होटल दिया, नहीं तो शायद आप उनके होटल में वेटर बनने के लायक भी नहीं थे। सुनैना की बात पर उन तीनों का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन इस बार विशाल बोला, हिस्सा तो तुम्हारा भी कुछ नहीं बनता था लड़की, लेकिन तुमने आदित्य भैया को बहला फुसला कर सब कुछ अपने नाम करवा लिया है और तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे हाथ से कुछ भी जाए, इसीलिए तुम हमें हमारा हिस्सा नहीं दे रही हो। हाँ ठीक है, मेरा हिस्सा बने या नहीं, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि अब मैं सिंघानिया इंडस्ट्रीज की मालकिन हूँ, तो इस सच को जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लो। और तुम्हारे हिस्से में तो फिलहाल इस घर की चाय भी नहीं आती है, लेकिन बोलो तो मैं बनवा सकती हूँ, क्योंकि चाय नाश्ता किए बिना तो यहाँ से जाने के मूड में नहीं लग रहे हो तुम लोग। इस बार चाचा जी गुस्से में बोले, चुप कर जाओ लड़की, तुम अब हद पार कर रही हो। हद तो आप लोगों ने पार कर दी है, बेशर्मी और लालच की हद, और उसके बाद भी इतने बेशर्म हो कि अभी भी यहाँ पर रुके हुए हैं और मेरे घर में खड़े होकर मुझ पर ही चिल्ला रहे हैं। चाची जी ने सुनैना को ताना मारने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारा घर ये आदित्य का घर है। नहीं नहीं, मेरे पति के बड़े भाई का घर, जो आदित्य से शादी करके तुम्हें बस ऐसे ही विरासत में मिल गया है और उस पर इतनी अकड़ दिखा रही हो। सुनैना ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे तो आपको चाचा जी का घर नहीं मिला क्या विरासत में? ओ सॉरी, इनके पास खुद ही कोई घर नहीं होगा, किराए के फ्लैट में रहते हैं क्या आप लोग? विशाल गुस्से में बोला, मम्मी ये लड़की, वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसके पिता ने उसे हाथ पकड़ लिया और कसकर दबाते हुए उसे नहीं में इशारा किया। सुनैना ने ये बात नोटिस की और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। सुनैना मुस्कुराते हुए विशाल की ओर देखकर बोली, क्या लड़की, लड़की लगा रखा है, भाभी हूँ मैं तुम्हारी रिश्ते में, वैसे अगर तुम उम्र में बड़े हो तो नाम भी ले सकते हो सुनैना। चाची जी ने अपने बेटे को अपने साथ खींचते हुए कहा, विशाल चलो यहाँ से। चाचा जी पहले ही दरवाजे की ओर बढ़ चुके थे। उन तीनों को वहाँ से बाहर जाते देख सुनैना ने मुस्कुराते हुए धीरे से बाय बाय करते हुए अपना हाथ हिलाया। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो रवि वहाँ खड़ा था। उसे वहाँ खड़ा देखकर सुनैना ने पूछा, अरे रवि तुम यहाँ? वो समझ गई थी कि आदित्य ने ही उसे वहाँ भेजा होगा, क्योंकि उसे चाचा चाची पर भरोसा नहीं था और उसे सुनैना की चिंता भी होगी। ये बात सोचकर सुनैना अपने में ही मुस्कुराई। रवि ने कहा, मैडम मैं बस वापस ही जा रहा हूँ, मेरा काम खत्म हो गया तो बस। सुनैना ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है तुम जाओ और दरवाज़ा भी बंद कर लेना। उसकी बात सुनकर रवि उसकी तरफ से निकलकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। सुनैना ने उसे बाहर जाते हुए देखा। वो बाहर निकलकर गया और सुनैना के कहने पर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद सुनैना सीढ़ियों की ओर बढ़ी, लेकिन तभी स्वीटी अपने कमरे से निकलकर वहां आई और उसने सुनैना को रोकते हुए आवाज़ लगाई। स्वीटी ने आगे आते हुए कहा, भाभी एक मिनट, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। स्वीटी के बुलाने पर सुनैना रुकी और पीछे मुड़कर उसकी ओर चली गई। वो बिना कुछ बोले उसकी ओर देखकर समझ गई कि वो अभी अभी हुए ड्रामे के बारे में उससे बात करेगी, इसलिए सुनैना चुपचाप स्वीटी के साथ बात करने के लिए उसके कमरे में चली गई। कुछ देर बाद आदित्य ने काफी देर तक सुनैना के वापस आने का इंतजार किया और तब तक वो स्टडी रूम में अकेला बैठा रहा। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था और उसका ड्रिंक करने का मन हो रहा था, लेकिन फिलहाल स्टडी रूम में भी ड्रिंक नहीं था, इसलिए वो सीधा अपने कमरे में पहुंचा और उसने अलमारी खोलकर उसके सारे कपड़े निकालकर जमीन पर फेंक दिए और उसमें शराब की बोतल ढूंढने लगा, क्योंकि पहले वो घर में और अपने कमरे में कहीं ना कहीं विस्की या शैंपेन की बोतल जरूर रखता था। तभी सुनैना कमरे में आई और अलमारी से निकला हुआ एक कपड़ा उसके चेहरे पर आ गिरा। सुनैना ने हैरानी से उस तरफ देखा, क्योंकि वो समझ गई कि कपड़ा अपने आप तो यहाँ उसके ऊपर नहीं आया। फिर उसने कमरे का हाल देखा, पूरे कमरे में कपड़े और बाकी सामान बिखरा पड़ा था। आदित्य अलमारी के अंदर ही घुसा हुआ कुछ ढूंढ रहा था जो उसे नहीं मिल रहा था। सुनैना थोड़ा आगे आई और उसने पीछे से आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। उसे महसूस हुआ कि आदित्य बहुत बेचैन था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जो सुनैना के हाथ रखने से थोड़ा शांत हुआ। पीछे से किसी के हाथ लगने पर आदित्य रुक गया। जब उसे एहसास हुआ कि वो सुनैना है, तो उसने अपने चेहरे पर आया पसीना पोंछते हुए अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश की और पीछे मुड़ा। क्या हाल बना दिया है कमरे का तुमने ये, और ऐसा क्या ढूंढ रहे हो आदि? अपनी भौहें चढ़ाकर शक भरी नजरों से आदित्य की ओर देखते हुए सुनैना ने सवाल किया। आदित्य कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वो सुनैना से झूठ नहीं बोल पाता था और सच वो बोलना नहीं चाहता था। क्रमशः